हरे कृष्ण जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ जय गिरिवर धारी जय गिरिवर धारी गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी जय गिरिवर धारी यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन जय ब्रज जन रंजन जय यशोदानंदना जय ब्रज जन रंजन जय ब्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारे जय कुंज बिहारी यमुना तीरावन चारे जय कुंज बिहारे जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधे जय राधा माधव जय कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी जय गिरिवर धारी हे गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी जय गिरिवर धारी Yasodanandana Jai Braja Jana Ranjana Jai Braja Jana Ranjana Jaya Yasodanandana Jaya Braja Jana Ranjana Jaya Braja Jana Ranjana Yamuna Tiravana Chare Jai Kunja Bihare Jai Yamuna Tiravana Chare Jai Kunja Bihare Jai Kunja Bihari Radha Madhava Jai Kunja Bihari Jai Radha Madhava Jai Kunja Bihari
Jai Om Vishnu Pada Paramahamsa Paribraja Kichari Ashtodrak Sri Sri Mother's Divine Grace Srila Bhai Charanarvind Bhakti Vedanta Goswami Maharaj Srila Prabhupada Ki Iskon Bibhuti Sansthapaka Acharya Srila Prabhupada Ki Jayom Vishnupada Paramahamsa Paribrajaka Acharya Ashtodrak Sri Srimad His Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada Ki Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Namachara Srila Haridas Thakur ki Prem se kaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nitananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasadi Gaur Bhakta Vrinda ki Sri Sri Radha Krishna Gopa Gopinath Shyama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan ki Braj Bhumi Sri Vrindavan Dhama ki Purushottam Kshetra Sri Jagannath Puridhama ki Jai Navadvip Maya Puridhama ki Jai Ganga Mai ki Jamuna Mai ki Bhakti Devi ki Krishna Bhakti Pradayini Srimati Tulasi Maharani ki Kaliyuga Pavan Harinama Sankirtan ki Hare Krishna Maha Mantra ki Srila Prabhupada Transcendental Book Distribution ki Nitai Gaura Premanande All glories to assembled devotees All glories to assembled devotees All glories to assembled devotees All glories, all glories, all glories to Sri Guru and Sri Gauranga
हरे कृष्णा हरे कृष्णा हम सभी का सौभाग्य है हमारे बीच में आज श्रीमान गौरांग प्रभु उपस्थित है जो हमें अभी संडे फीस का जो प्रवचन है उनके द्वारा दिया जाएगा उनका अल्प परिचय इस प्रकार है कि 1971 में एक दक्षिण भारत परिवार में उनका जन्म हुआ 1993 में उन्होंने आईआईटी पवई से इंजीनियरिंग किया है उसके बाद कुछ समय के लिए उन्होंने किर्लोस्कर कंपनी जो है उनके लिए उन्होंने काम किया था और उसके बाद श्री राधा गोपीनाथ मंदिर में उन्होंने अपना पूर्ण समय ब्रह्मचारी के रूप में उन्होंने सेवा करने के लिए अपना जीवन समर्पित किया। अभी गिरगांव का जो गिरगांव चौपाटी का जो श्री राधा गोपीनाथ मंदिर है, इस मंदिर का जो प्रेसिडेंटल बोर्ड है, उस प्रेसिडेंटल बोर्ड के प्रभु जी मेंबर है, और आप सभी ने, आप में से कई सारे भक्तों ने स्टार प्लस टीवी पे आत्मा सीरियल लगती है उसके ऊपर प्रभु जी के प्रवचन सुने होंगे। प्रभु जी आत्मा सीरियल पे ये जो अलग अलग जो प्रवचन करते हैं उसमें से एक प्रवचन करते हैं जो रेगुलरली प्रवचन देते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स के लिए भगवद गीता, हरे कृष्णा, स्टूडेंट्स जो है उनके लिए भगवद गीता और भागवतम के लिए वो अलग अलग सेमिनार्स देते हैं। जैसे कल काफी सारे स्टूडेंट्स ने देखा होगा कि उनका जो कल का जो सेमिनार था मेरा भारत महान, वो काफी इनकरेज, हरे कृष्णा, युवकों को उत्साह देने के, हरे कृष्णा, तो अलग अलग सेमिनार्स उनके भागवतम और भगवद गीता के ऊपर हो जाते हैं। विश्व के अलग अलग कंपनियों में ने प्रभु जी ने अलग अलग मैनेजर्स लोगों के लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर कोर्सेस कंडक्ट किए थे। इसके अलावा अलग अलग जेल में कैदियों के लिए भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोर्स वो लेते हैं। तो ऐसे अलग अलग कोर्स के द्वारा वो पूरे विश्व भर अलग अलग मुंबई पुणे और युवकों में प्रचार करके भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा देते हैं। तो ये हमारे सबका सौभाग्य है कि प्रभु जी हमारे बीच में उपस्थित है। आइए हम उनका हृदयपूर्वक अपने पारंपरिक पद्धति से तीन बार हरि बोल बोल के धन्यवाद देके स्वागत करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल,
हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरंधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नम ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीन इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्या नाम्ने गौरत्विषे नमः पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकां हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो 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 हरे 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 कृष्णा। तो उपस्थित सभी भक्तों का आज के इस रविवार के फीस्ट कार्यक्रम में हम हार्दिक स्वागत करते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए आज हमने प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत के प्रवचन में छठे स्कंद श्रीमद् भागवत से एक प्रसंग आरंभ किया। इस प्रसंग के अंतर्गत देवताओं के लोकों में इंद्रदेव अपने निकट के पार्षदों के संग नाना प्रकार के अप्सराओं के नृत्य को देखने में लीन थे। उस समय उनके गुरु बृहस्पति जी का प्रवेश होता है। इंद्रदेव उस समय भोग विलास के भाव में लीन थे और बृहस्पति का हस्ताक्षेप नहीं चाहते थे, इसलिए बृहस्पति को देखकर भी अनदेखा करके उनकी उपेक्षा कर दी। बृहस्पति भी उच्च कोटि के संत थे, इंद्र के द्वारा इस तरह अपमानित होने पर बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से चले गए। महान संतों का लक्षण होता है कि अपने प्रति अपराध स्वीकार नहीं करते, लेकिन फिर भी भगवान के इस प्रकृति का नियम है कि संतों के प्रति अपराध होने पर उसका प्रभाव अवश्य पड़ता है। इंद्र के द्वारा किए गए अपराध का परिणाम यह हुआ कि देवताओं की शक्ति क्षीण हो गई। असुर इस बात को भांप गए कि देवताओं की शक्ति कम हुई है, तो उन्होंने आक्रमण कर दिया और ऐसी अवस्था में देवतागण परास्त हो गए। असुरों का पलड़ा भारी हुआ और वो देवताओं पर विजयी हो गए। अपनी पराजित अवस्था से त्रस्त होकर देवतागण विचार करने लगे कि हमें क्या करना चाहिए। इस भौतिक जगत में चाहे कोई व्यक्ति देवलोकों में भी जाए, लेकिन पराजय से मुक्त नहीं हो सकता, संताप से मुक्त नहीं हो सकता, चिंताओं से मुक्त नहीं हो सकता। कई बार हमको लगता है कि यहां मैं बंबई या पुणे शहर में हूं इसलिए परेशान हूं, दूसरे किसी शहर में जाऊंगा तो आनंदित हो जाऊंगा। हो सकता है भारत में हूं इसलिए परेशान हूं, अन्य किसी राष्ट्र में जाऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा। तो हम अपने वर्तमान परिस्थिति को परिवर्तित करने के लिए बहुत प्रयास करते हैं और विचार करते हैं कि वर्तमान परिस्थिति के परिवर्तन होने पर मेरे जीवन की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। लेकिन इस सिद्धांत की पुष्टियां नहीं हुई है, क्योंकि देवतागण देवलोकों में बैठे हैं फिर भी परेशान हैं। अर्थात भौतिक जगत का नियम है कि इस भौतिक जगत में आप कहीं पर भी पहुंच जाओ, वहां पर संताप होगा, चिंता होगी और समस्याएं आएंगी, उससे बच नहीं सकते। ये जगत का नियम है, इससे कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता। तो इसलिए देवता लोग अब परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास भागे भागे जाते हैं। ब्रह्मा जी के पास जाकर अपना प्रस्ताव रखते हैं कि ब्रह्मा जी देखो कितनी गड़बड़ हो गई, इतने बड़े बड़े देवता गण हैं हम लोग, भगवान को कितने प्रिय हैं, भगवान के नियमों का पालन करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे साथ ऐसा अन्याय क्यों हुआ। तो भौतिक जगत में व्यक्ति चाहे कितनी भी गलती करे, लेकिन उसको लगता है मेरे साथ अन्याय हुआ है। उसे हमेशा लगता है कि मुझे जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला। तो अब देवतागण ब्रह्मा जी के सामने अपने परेशानी व्यक्त किए तो ब्रह्मा जी कहने लगे, अरे मूर्खों, इतना भी नहीं समझते क्या? जब किसी महान संत के प्रति अपराध करोगे उसका परिणाम घातक होगा। अरे आप लोगों ने अपने ही गुरु बृहस्पति का अपमान किया और उसके ठीक विपरीत असुरों ने अपने गुरु शुक्राचार्य को कितना सम्मान दिया। असुरों ने मिलकर शुक्राचार्य की इस प्रकार सेवा की कि शुक्राचार्य उनकी सेवा से प्रसन्न होकर असुरों की झोली आशीर्वाद से भर दिए और केवल शुक्राचार्य और अन्य भृगुवंशियों के आशीर्वाद के परिणाम स्वरूप अब असुरों की शक्ति इतनी हो गई है कि 33 कोटि देवता मिलकर भी किसी प्रकार से आंच नहीं लगा सकते। तो कहने लगे, त्रिपिष्टपम किम गणयत अभेद्य मंत्राभृगुणाम अपिशिक्षितार्थम। तीनों लोकों के सभी देवतागण मिलकर भी अब असुरों को किसी प्रकार से क्षति नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि अब असुर अभेद्य हो गए हैं। और उनकी शक्ति का रहस्य क्या है कि उन्होंने महान संतों की पूजा की, सेवा की। तो ये प्रकृति का नियम है, महान संत महान भक्तों की सेवा से शक्ति प्राप्त होती है और महान संतों के चरण कमलों के प्रति अपराध करने पर क्षति क्षीण हो जाती है। तो कहते हैं, न विप्र गोविंद गौईश्वराणाम् भवन्त्यभद्राणि नरेश्वराणाम्। और नियम यह है कि कोई भी व्यक्ति गोविंद, ब्राह्मण और गोमाता की सेवा करेगा तो उसकी शक्ति में वृद्धि होगी, और इनके प्रति कोई अपराध करेगा तो उनकी शक्ति में क्षीणता आएगी, क्षति आएगी। तो इस तरह वो कहते हैं कि भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए भक्त की कृपा आवश्यक है, और जब भक्त किसी पर प्रसन्न होते हैं तो अपने आप अकस्मात भगवान की कृपा उसके माध्यम से चलती चली जाती है। इस तरह से देवताओं को ब्रह्मा जी कहते हैं कि आपने जो किया वो उचित नहीं किया, बहुत अनुचित किया। पूरे विश्व भर में कृष्ण भक्ति का प्रचार किया श्रील प्रभुपाद ने। श्रील प्रभुपाद पूर्व आचार्यों की कृपा को लेकर पाश्चात्य देशों में गए और दीर्घ काल तक भारत में प्रचार करने का वो प्रयास कर रहे थे, लेकिन भारत में प्रचार करने में प्रभुपाद जी को बहुत समस्या आ रही थी, क्योंकि भारत में किसी को वो कोई किताब दिखाते, गीता दिखाते तो भारत में लोग कहते हम तो ये जानते ही हैं। अरे स्वामी जी आप हमको क्या गीता बता रहे हो, अरे हमारे तो दादा परदादा सभी गीता के बड़े बड़े पंडित थे, आप हमको गीता क्या बताओगे, हम आपको दो चार बात गीता की बता देंगे। तो प्रभुपाद परेशान होकर भारत में बहुत प्रयास करने के बाद फिर पाश्चात्य देशों में गए। तो वर्णन आता है नवद्वीपे यही शक्ति नौकैला प्रकाशे से शक्ति प्रकाशिनी स्तारिला दक्षिण देशे। श्री चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में अपने प्रचार की शक्ति का प्रदर्शन नहीं किए। थोड़ा इसका वॉल्यूम बढ़ाना। महाप्रभु दक्षिण देशों की यात्रा में गए तो दक्षिण देशों की यात्रा में प्रचार करते समय उन्होंने अपनी अभूतपूर्व शक्ति का प्रदर्शन किया। तो कविराज गोस्वामी कहते हैं नवद्वीप यही शक्ति न कोयला प्रकाश है। महाप्रभु का जन्म हुआ नवद्वीप में, लेकिन महाप्रभु ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन नवद्वीप में नहीं किया। से शक्ति प्रकाशिनी स्तारिला दक्षिण देशे, दक्षिण देशों में जाकर वहां पर अपने भक्ति के प्रभाव से लोगों को भक्ति और प्रेम भाव में अभिभूत किया। कविराज गोस्वामी प्रश्न पूछते हैं ऐसा क्यों, तो श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं ये महान संतों का लक्षण है, वो केवल भगवान की कृपा लेकर वितरित करने के लिए आतुर हैं, यदि कोई उचित पात्र मिले तो उनको दे देंगे, लेकिन उत्कृष्ट सुस्वादु व्यंजन पकाने के पश्चात भी यदि कोई उसे स्वीकार करने का उचित पात्र न मिले तो व्यक्ति वहां कब तक खड़ा होकर प्रयास करता रहेगा। तो जब महाप्रभु नवद्वीप में अवतरित हुए तो नवद्वीप में महास्मार्त पंडित लोग बहुत परेशान करते थे और कोई भी शुद्ध भक्ति का ज्ञान स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में प्रचार नहीं किए लेकिन दक्षिण देशों में वो प्रचार करके आए। तो प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में कि प्रचार के समय कई बार जिनको तुम प्रचार कर रहे हो वो सुनने के मूड में न हो तो वो जगह छोड़ दो और दूसरी जगह जाओ, और वहां पर वो मूड में नहीं हो तो तीसरी जगह जाओ, जगत में कोई स्थानों की कमी नहीं है। तो जहां पर भी उचित अनुकूल पात्र मिल जाए इस कथा के लिए, इस संदेश के लिए, उन्हें बांटना है। इसलिए भारत में प्रचार करने के पश्चात प्रभुपाद के कई विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, बहुत प्रयास किया, लेकिन फिर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के इस आदेश को अपने मस्तक पर धारण करके वो पाश्चात्य देशों में गए और हमारे भूतपूर्व आचार्यों की अमृतवाणी को अपने सुंदर ग्रंथों के माध्यम में रचना करके श्रील प्रभुपाद जी अकेले ही गए।
इन्हीं ग्रंथों का वितरण प्रभुपाद भारत में भी प्रयास किए। झांसी में अकेले वो प्रचार कर रहे थे और छोटी सी बुक लिखी थी उन्होंने, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, और वहां पर किसी सज्जन को दिखाया, ये लीजिए इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स बहुत अच्छी बुक है, ये बुक लेकर आप गोलोक धाम जा सकते हो। वो झांसी में सज्जन पूछता है कि गोलोक जाने के बाद मैं वापस झांसी आ सकता हूं क्या? तो बोले कैसे पागल हो भाई, गोलोक जाने के बाद वापस क्यों आना चाहते हो? बोले मेरी मातृभूमि है, झांसी तो मेरी जान है, तो मुझे आना ही पड़ेगा वापस। तो प्रभुपाद बोले एक बार यद गत्वा न निवर्तन्ते, एक बार भगवत धाम जाके कोई वापस नहीं आ सकता। तो बोले नहीं चाहिए मेरे को बुक, क्योंकि मेरे को वापस आना है। तो ऐसे ऐसे लोग मिलते थे प्रभुपाद को भारत में उस समय। और भारत में विशेषता यह है कि लोग कोई भी शुद्ध भक्ति का मार्ग पालन नहीं करना चाहता, क्योंकि उनको लगता है हम पहले से डिवोटी हैं, मेरे जन्म से ही नाम मेरा है कृष्णा, मेरा जन्म से ही मुझे लोग राम बाबू बुलाते हैं, तो मेरे नाम में ही राम है कृष्ण है, तो फिर तुम क्या मुझे कृष्ण बताओगे। हाल ही में एक प्रेरणा फेस्टिवल के बाद एक सज्जन आके राधानाथ महाराज को मिले और महाराज उनको पूछ रहे थे तो तुम हरे कृष्ण में रुचि ले रहे हो, अच्छी बात है। वो बोला मेरे को रुचि लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरा नाम ही कृष्णा रेड्डी है, कृष्णा रेड्डी मेरा नाम है, नाम में ही कृष्णा है। तो महाराज ने कहा तुम्हारा नाम कृष्णा रेड्डी है, बट आर यू रेडी फॉर कृष्णा? तो नाम तो तुम्हारा है, लेकिन काम उसके अनुसार या अनुकूल नहीं होगा तो कोई लाभ नहीं। तो इसलिए भारत की विशेषता यह है कि 10 बात बोलने के लिए लोग तैयार रहते हैं। किसी को बताओ कि भाई हरे कृष्ण में आ जाओ, बोलेंगे बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप लोग हरे कृष्ण वाले बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। तो बोले आप भी आते हो क्या? हम आएंगे बाद में, आप चलो, आप आगे चलो, हम आते हैं, हमको बताने की आवश्यकता नहीं। इसलिए मैं कहता हूं भारत में प्लेयर कम है, कमेंटेटर ज्यादा है, खिलाड़ी कम है जो मैदान में उतरे, लेकिन कटघरे में बैठ के कमेंट्री देने वाले बहुत हैं। तो इसलिए प्रचार करना बहुत कठिन है। और श्रील प्रभुपाद इन ग्रंथों को लेकर पाश्चात्य देशों में गए, पाश्चात्य देशों में उन्होंने अभूतपूर्व क्रांति मचा दी और इन ग्रंथों के माध्यम से लोगों के हृदय में परिवर्तन ला दिया। और ऐसे ऐसे लोग जो अपने अधिकारियों के विपरीत जा रहे थे, अपने माता पिता के आदेशों का पालन नहीं कर रहे थे, समाज में उत्पात मचा रहे थे, ऐसे लोग श्रील प्रभुपाद के सामने झुक रहे थे, उनको सम्मानित कर रहे थे। और केवल श्रील प्रभुपाद को सम्मान देकर, उनके आदेशों का पालन करके, उनके ग्रंथों के वितरण में अनुकूल सहायता करके, पूरे विश्व भर में 100-200 कितने ही बड़े बड़े सुंदर मंदिर स्थापित हो गए। इतना ऐश्वर्य आ गया, इतना धन आ गया। 40 रुपए लेके प्रभुपाद जी गए थे और कुछ ही समय में 40 कोटि रुपए का कितना प्रॉपर्टी पूरे विश्व भर में आ गया। उसका कारण केवल यह था कि महान संतों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, श्रील प्रभुपाद का सम्मान हुआ, ऐसा सम्मान जो भारत में भी उस समय कोई नहीं किया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहां पर जो ब्रह्मा जी कह रहे हैं यह बहुत उचित बात है कि देवताओं ने सबसे बड़ी गलती की कि अपने ही गुरु के प्रति अपराध किया, उन्हें अपमानित किया, इसलिए ऐश्वर्य छीन लिया गया। और असुरों ने अपने ही गुरु शुक्राचार्य को सम्मानित किया तो सारा ऐश्वर्य फिर आ गया। तो प्रभुपाद पाश्चात्य देशों में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की ड्यूटी स्थापित किए पहले सैन फ्रांसिस्को में। तो जिस दिन उन्होंने ड्यूटी स्थापना की, अगले दिन जब वो गए दर्शन के लिए तो देखा कि जगन्नाथ ड्यूटी वहां से गायब है। तो प्रभुपाद पूछे जगन्नाथ कहां गए? तो किसी भक्त ने कहा उनको लेकर बीच पे गए हैं, समुन्दर के पास। तो प्रभुपाद ने कहा ऐसा क्यों किया? तो बोले हमने सोचा कि जगन्नाथ एक जगह बैठे बैठे बोर होते होंगे, जरा घुमा के लाएंगे। तो प्रभुपाद बोले ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये भगवान है, इनको स्थापना करने के बाद उसको हिलाना नहीं, और हिलाना भी है तो उसके लिए एक विधि होती है, उसको कहते हैं रथ यात्रा। और श्रील प्रभुपाद ने रथ यात्रा की विधि बता दी और पूरे विश्व भर में रथ यात्रा की स्थापना कर दी। केवल एक व्यक्ति ने पूरे विश्व भर में ऐसी क्रांति मचाई कि रथ यात्रा जो कि केवल भारत में जगन्नाथपुरी में प्रधानभूत रूप से मनाई जाती है, उस रथ यात्रा को रोकने के लिए अंग्रेजों ने भारी प्रयास किया, क्योंकि अंग्रेज समझ नहीं पाते थे कि हर साल अचानक एक दिन 10-15 लाख लोग एकत्र हो जाते हैं और अगले दिन सब गायब। और ऐसा नहीं कि उसका विज्ञापन होता है, बिलबोर्ड लगते हैं, एडवर्टाइज होता है कि आ जाओ आ जाओ, कहीं कोई उसके बारे में चर्चा नहीं करता, लेकिन बराबर उसी दिन सब पहुंच जाते हैं। और ये जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को खींचते हैं, चिल्लाते हैं, गाते हैं, क्या करते हैं पता नहीं, सब गायब। फिर तो ये अंग्रेज उसको रोकने का बहुत प्रयास किए, बहुत उल्टा सीधा आर्टिकल लिखे उसके बारे में, लेकिन अंग्रेज आए चले गए, जगन्नाथ रथ यात्रा नहीं रोक पाए, उल्टा जगन्नाथ रथ यात्रा लंदन में चालू हो गया प्रभुपाद की दया से। तो प्रभुपाद जब जगन्नाथपुरी में आए थे तो एक पांडा प्रभुपाद को चुनौती दे रहा था कि स्वामी जी आप जगन्नाथ को पूरे विश्व में कैसे घुमा रहे हो, जगन्नाथ तो पुरी में होते हैं और पुरी के जगन्नाथ को आप पाश्चात्य देशों में लेके गए, ये ठीक नहीं किया। प्रभुपाद ने कहा ये जगन्नाथ है, उड़िया नाथ नहीं है, ये उड़ीसा के नाथ नहीं है, पूरे जगन के नाथ हैं, तो आपकी अनुमति की आवश्यकता नहीं मुझे इनको सब जगह ले जाने के लिए। तो इस तरह भारत में कई लोगों की उस समय संकुचित विचारधारा के परिणाम स्वरूप श्रील प्रभुपाद के प्रचार कार्य में उचित सहयोग नहीं मिल रहा था। वो सहयोग पाश्चात्य देशों के कई जवान युवाओं ने प्रभुपाद को उस समय दिया, जिनके प्रयासों से प्रभुपाद ने पूरे विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना की, जिसकी नींव थी उनके ये ग्रंथ, जिन ग्रंथों पे श्रील प्रभुपाद जी ने अपने पूरे मिशन का पूरा छवि उसमें प्रस्तुत कर दिया। तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि 1966 और 77 के बीच में श्रील प्रभुपाद जी ने जो पूरे इस्कॉन की स्थापना विश्व भर में की, उसका फाउंडेशन, उसकी नींव उनके ग्रंथ थे, और प्रभुपाद के उनके कुछ शिष्यों ने मिलकर इन ग्रंथों का पूरे विश्व भर में वितरण करके, मंदिरों की स्थापना करके श्रील प्रभुपाद को संतुष्ट किया। और ऐसे संतोष से आज्ञाकारी शिष्यों के प्रभाव से भगवान अपने आप प्रसन्न होकर नाना प्रकार के ऐश्वर्य उनको भेजने लगे। तो प्रभुपाद जी जूह के ऊपर टेरेस पर बैठकर कुछ लोगों से बात कर रहे थे, और उस समय ब्रिज रतन मोहता नाम के बहुत बड़े उद्योगपति है, बिजनेसमैन, वो अंदर प्रवेश किए और प्रभुपाद ने कहा ये ब्रिज रतन मोहता जी हैं, बिरला के परिवार से जुड़े हुए हैं, हमारे बीच आए हैं और ये हमारा बहुत सहयोग कर रहे हैं। तो मोहता जी प्रभुपाद को कहने लगे, अरे प्रभुपाद जी आप मेरे को क्या बिजनेसमैन बता रहे हो, असली बिजनेसमैन तो आप हो, 40 रुपए लेके गए, अब 40 करोड़ का संपत्ति लेके बैठे हो। तो प्रभुपाद ने कहा तो फिर तुम भी मेरे बिजनेस में आ जाओ और आप भी मेरा सहयोग करो, जुड़ जाओ, लग जाओ हमारे साथ। तो कहने लगे आपके साथ अभी सन्यासी तो नहीं बन सकता, लेकिन आपके मिशन का मैं सहयोग करूंगा और आपके मंदिर बांधने में और किताब वितरण में जो भी सहयोग लगेगा वो मैं करने के लिए तैयार हूं। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए कई लोग प्रभुपाद के साथ अपना संपूर्ण जीवन समर्पित करके सक्रिय सहयोग दे रहे थे, और कई ऐसे लोग विश्वभर में थे जो श्रील प्रभुपाद के मिशन की सहायता बाहर से कर रहे थे, यथाशक्ति यथासंभव धन के माध्यम से, अपने नाना प्रकार के कॉन्टैक्ट के माध्यम से, अपने प्रयासों के माध्यम से। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद को संतुष्ट करना हो तो बहुत आसान है, प्रत्येक व्यक्ति अपने देश काल पात्र और शक्ति के सामर्थ्य के अनुसार इस मिशन में सहभाग दे सकता है और इसके माध्यम से अपने आप नाना प्रकार की जो इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति हो जाती हैं। आध्यात्मिक और भौतिक ऐश्वर्य सब सर्वगुण संपन्न अपने जीवन में तुरंत ही प्रकट हो जाता है, और ये हमने साक्षात इस्कॉन के संस्थापना और उसके प्रचार के इतिहास में देखा है, अनुभव किया है। तो इसलिए यहां पर ब्रह्मा जी कह रहे हैं देवताओं को कि अरे देवतागण, आप लोग भटकते हुए मेरे पास आए हो, लेकिन पहले समझो कि तुम्हारे स्वयं की कुकृत्य कैसे थे कि अपने ही गुरु के प्रति आपने अपराध कर दिया। तो चाहे आप सुर हो या असुर हो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। जगत का सिद्धांत है, यदि महान संतों के प्रति अपराध हुआ तो फिर संपूर्ण ऐश्वर्य और शक्ति का नाश होता है, और यह आपके जीवन में हो चुका है। इसलिए अब प्रायश्चित करने का एक उचित उपाय बताता हूं, वो ये कि आप लोग जाओ और विश्वरूप नाम के एक महान संत हैं, और विश्वरूप को गुरु के रूप में स्वीकार कर लो, और विश्वरूप से जब आप शिक्षा प्राप्त करोगे और उसकी सेवा पूजा करोगे तो फिर आपकी शक्ति में वर्धन आएगा। विश्वरूप की विशेषता यह है कि विश्वरूप के पास नारायण कवच मंत्र है। इस नारायण कवच मंत्र की विशेषता है कि असीम मात्रा में शक्ति का संचार आपकी रगों में होगा, और फिर कोई भी प्रतिद्वंद्वी आपको परास्त नहीं कर सकता। मेरे आदेश को स्वीकार करो, तुरंत जाओ, विश्वरूप के चरणों में गिर जाओ। सारे देवतागण भागे भागे गए विश्वरूप के पास। विश्वरूप आयु में छोटे थे, देवताओं को इस तरह उनके समक्ष नतमस्तक होते हुए देखकर वो कुछ विस्मित हुए, घबरा गए और कहने लगे, आप लोग ये मेरे सामने क्यों झुक रहे हो? देवता कहने लगे, बस आप ही हमारा उद्धार कर सकते हो और कोई नहीं, आप ही वो हो। तो देवतागण जो है उनको बस शक्ति चाहिए, भोग की सुविधा चाहिए, उसको प्राप्त करने के लिए वो कहीं भी जाएंगे, कहीं भी नंबर लगाएंगे, कहीं भी झुकेंगे, किसी को भी पूजा करेंगे। तो इस पूरे प्रसंग में हम यही देखते हैं, देवता दर दर भटकते फिरते हैं। तो अब भागे हैं विश्वरूप के पास, और विश्वरूप के पास जाकर कह रहे हैं कि कृपा करके आप हमारी इच्छा की पूर्ति कीजिए, आप हमारे पुरोहित बन जाइए। तो यहां पर श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, पुरोहित का अर्थ क्या होता है? पुरोहित तो हित अर्थात किसी का हित करना, और पुरो अर्थात सबसे पहला। तो पुरोहित का अर्थ वो है कि कोई वास्तविक प्रामाणिक गुरु अपने शिष्यों के सर्वप्रथम भला क्या विचार करेगा? आध्यात्मिक भला, किस तरह से उसका आध्यात्मिक लाभ हो। तो जो गुरु अपने शिष्य के आध्यात्मिक उत्थान के विषय में योजना बनाता है और उसके अनुकूल उसको आदेश देता है और उचित शिष्टाचार का विज्ञान देता है, सिखलाता है, प्रशिक्षण देता है, ऐसे प्रामाणिक गुरु को पुरोहित कहा जाता है। जो व्यक्ति केवल यज्ञ दान इत्यादि करने के पश्चात दक्षिणा लेकर गुल हो जाए, ऐसे व्यक्ति को पुरोहित नहीं कहा जाता। तो इसलिए यहां पर पुरोहित विश्वरूप को स्वीकार किए हैं, लेकिन वास्तव में विश्वरूप उनको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं देने वाले, क्योंकि देवतागण वो चाहते भी नहीं है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में यदि किसी का आश्रय लेना हो, किसी गुरु को स्वीकार करना हो, तो गुरु का चयन किसके आधार पर होना चाहिए? इस आधार पर होना चाहिए कि ऐसा प्रामाणिक गुरु मैं स्वीकार करूं जिसके चरणों का आश्रय लेकर मैं भगवत धाम की प्राप्ति कर सकूं, इस भौतिक जगत में अपने सभी समस्याओं का समाधान करके भगवत धाम में प्रवेश करने में जो सहायक बने, ऐसे संतों का आश्रय मुझे लेना है, न कि किसी अलग अलग लोगों के पास जाकर केवल आशीर्वाद लेकर, कुछ धनराशि कमाकर, कुछ सत्ता में वृद्धि करके मैं अपना गुजारा निकालूं। इसके लिए लोग इधर उधर भटकते फिरते हैं, बाबा, योगी, स्वामी, ये वो सबको स्वीकार करते हुए। प्रभुपाद के पास एक व्यक्ति आके कहने लगे, मैंने एक गुरु स्वीकार किया है, वो मुझे स्पर्श करता है तो मुझे झटका लगता है। प्रभुपाद ने कहा, बिजली के सॉकेट में हाथ डालो, उससे बड़ा झटका लगेगा, तो वो तुम्हारा गुरु हो गया क्या? दूसरा एक कहने लगा, प्रभुपाद जी, मेरे गुरु ने मुझे एक मंत्र दिया है, वो मंत्र का उच्चारण करता हूं तो मैं सीट से ऊपर उठकर उड़ने लगता हूं। प्रभुपाद ने कहा कॉकरोच भी उड़ता है, इसका अर्थ ये नहीं कि वो कोई बहुत महान कार्य संपन्न किया है। इन सब बातों के लिए किसी संत के पास नहीं जाना चाहिए। तो यहां बड़े बड़े देवतागण जो वास्तव में सत्गुण में स्थित हैं, नाना प्रकार के पुण्य के कार्य करने के पश्चात उस पद की प्राप्ति किए हैं, वो भी कितने दुर्भाग्यशाली हैं कि प्रामाणिक गुरु का आश्रय नहीं मिल रहा और किसी महान संत पुरुष के पास जा भी रहे हैं तो केवल भौतिक इच्छा की कामना से। इसलिए वास्तव में भारत में रहकर और नाना प्रकार के बाकी सभी कार्य करते हुए यदि हमको श्रील प्रभुपाद के मिशन के साथ जुड़ने का स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ है और श्रील प्रभुपाद की कृपा से और दया से भक्तों के संग का आश्रय प्राप्त करके भगवत धाम में प्रवेश करने की जानकारी प्राप्त हुई है, तो सोचना चाहिए कि कोटि कोटि जन्मों के पश्चात ऐसे सौभाग्य का उदय मेरे जीवन में हुआ है और इसको मुझे बहुत भली भांति स्वीकार करना है। और यदि अवसर प्राप्त हो तो यह सौभाग्य दूसरों में भी वितरित करने का यथाशक्ति यथासंभव प्रयास करना है, क्योंकि बहुत ही दुर्लभ अवसर है। इसलिए यहां पर देवता विश्वरूप को स्वीकार कर रहे हैं, किसके रूप में? अपने गुरु के रूप में, लेकिन किस इच्छा से? शक्ति प्राप्त करने की इच्छा से। विश्वरूप बात को स्वीकार कर लेते हैं और कहते हैं ठीक है। तो फिर विश्वरूप देवताओं के पास आकर नारायण कवच मंत्र पढ़ते हैं, देवताओं के अंदर शक्ति आ जाती है और उस शक्ति को स्वीकार करके देवतागण फिर असुरों पर धावा बोलते हैं। और क्योंकि अब नारायण कवच मंत्र उनके पास है तो जब अब आक्रमण करते हैं तो सारे असुर डर के भाग जाते हैं, तो देवताओं की शक्ति फिर पुनर्स्थापित हो जाती है। और विश्वरूप प्रतिदिन मंत्रों का उच्चारण करते थे, यज्ञ संपन्न करते थे और यज्ञ में यज्ञ की अग्नि में आहुति देते समय नाना देवताओं का नाम लेते हुए वो मंत्र उच्चारण करते हुए आहुति देते, जिससे कि उन देवताओं की शक्ति बढ़े। लेकिन समस्या ये थी कि विश्वरूप अपनी मां की ओर से असुरों से भी संबंधित थे। उनकी जो मां थी रोचना, वो असुरों के कुल में जन्मी थी, इसलिए विश्वरूप के हृदय में असुरों के प्रति भी सहानुभूति थी। अब क्योंकि वो देवताओं ने उनको यहां पर एम्प्लॉय कर दिया था तो वो तो उनके लिए अपना यज्ञ कर रहे थे, तो वो क्या करते कि एक मंत्र बोलते देवताओं के नाम पर और कहते ओम इंद्राय स्वाहा और इस तरह वो अग्नि में आहुति देते और फिर बिना उच्चारण किए धीमे स्वर में बिल्कुल चुपचाप वो असुरों के नाम पर भी एक आहुति डालते, ओम इंद्राय स्वाहा ऐसा करते फिर और इंद्रा वहां से देख रहा है, रोज रोज देख रहा है कि ये मंत्र एक बोलता है लेकिन आहुति दो डाल रहा है और दूसरी आहुति देते समय कुछ तो बड़बड़ करता है, ये बड़बड़ करता है कि गड़बड़ करता है, क्या बात है? और इंद्र को तो कभी किसी पर विश्वास होता ही नहीं है, क्योंकि वो स्वयं ऐसा है कि हमेशा भोग विलास के पीछे भागता है, हमेशा सत्ता का भूखा है, तो विश्वास नाम का बात तो उसके जीवन में है ही नहीं। तो विश्वरूप को रखने के बाद भी वो देखता रहता था ये कर क्या रहा है, जोर से मंत्र बोल रहा है और दूसरा चुपचाप एक कुछ तो मंत्र बोल के अंदर डाल रहा, क्या बात है? और पास में अपने किसी विश्वास पात्र सेवक को भेजकर पता लगा ये करता क्या, देख के आओ। तो उसने उनको रिपोर्ट दिया कि आधी आहुति जो है असुरों के नाम पे जा रही है। तो इंद्र को आ गया क्रोध, हाथ में लिया तलवार और विश्वरूप के सर को काट डाला। पहला अपराध किया था बृहस्पति के प्रति, वो तो केवल मानसिक अपराध था, अब दूसरा गुरु जो विश्वरूप को लेके आया उनको तो हलाल कर दिया। तो इंद्र धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे हैं, प्रगति हो रहे हैं अपराध के क्षेत्र में। क्यों? क्योंकि अभी तक जो अपराध की जो बीज है उससे वो मुक्त नहीं हुए हैं, अभी जो भोग की प्रवृत्ति है अभी भी अहंकार है, इसलिए परिस्थिति परिवर्तित करने पर भी वो वृत्ति से मुक्त नहीं हो रहे। तो ऐसी अवस्था में इंद्र बहुत भ्रमित और परेशान हो जाते हैं कि अरे मैंने क्या कर दिया, तो फिर प्रायश्चित करने लगते हैं। और उसी समय इंद्र का प्रायश्चित संपन्न हो रहा है, लेकिन वर्णन आ रहा है कि विश्वरूप के पिता, और पिता का नाम था त्वष्ट, उनको बड़ा क्रोध आता है कि देवताओं ने मेरे पुत्र के साथ अन्याय किया, मेरा पुत्र मासूम था, निष्कपट था, केवल देवताओं और विशेष रूप से इंद्र पर विश्वास करके उनकी सहायता करने के लिए वो गया, लेकिन देखो देवताओं के समाज में भी ऐसे कपटी लोग हैं कि मेरे पुत्र के साथ अन्याय पूर्वक बर्ताव करके बड़े निर्मम रूप से उसकी हत्या कर दी। इन नालायक देवताओं को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ऐसा विचार करके उन्होंने यज्ञ संपन्न किया। तो सोचो द्वेष, वैर, कपट, शत्रुता, ये सभी सब लोकों में चलता है, 14 लोकों में, इससे कोई मुक्त नहीं हो सकता। जब तक भगवत धाम में नहीं प्रवेश करेंगे, इस भौतिक जगत में हर स्थान पर आपको दिखेगा। इसलिए इस भौतिक जगत में आदर्श समाज स्थापित करना लगभग असंभव है, इसलिए आध्यात्मिक समाज भी स्थापित करने का प्रयास करो, तो भौतिक जगत के भौतिक लोगों की भौतिक वृत्ति तो वहां पर प्रवेश करेगी ही। इसलिए आदर्शता के पीछे ज्यादा अधिक भागेंगे तो केवल हताश होंगे। इसलिए यथाशक्ति जो भी प्रयास संभव हो आध्यात्मिक क्षेत्र में करना चाहिए, अन्यथा इन प्रभावों से बचना और मुक्त होना लगभग असंभव है। और इसलिए यहां देखा गया है कि त्वष्ट के मन में इतना क्रोध आ गया कि मेरे पुत्र के साथ अन्याय हुआ। क्यों? और क्योंकि उनके पास शक्ति थी मंत्रों की, तो मंत्र के उच्चारण से उन्होंने एक ऐसा विशाल असुर तैयार किया, हतपुत्रस्ततस्त्वष्ट जुहा इंद्राय शत्रवे। वर्णन आ रहा है कि उन्होंने बहुत सुंदर एक यज्ञ संपन्न किया और उसमें मंत्र उच्चारण कर दिया, इंद्र शत्रु विवर्धस्व माचिरम जहि विद्विषम, और कह दिया कि ऐसा असुर पैदा हो जो इंद्र की हत्या करे। इस तरह से मंत्र कह दिया इंद्र शत्रु, लेकिन मंत्र के उच्चारण के समय एक छोटी सी त्रुटि उनसे हो गई। वो क्या? इंद्र शत्रु के बदले उन्होंने उसको लंबा खींच दिया, इंद्र शत्रोह कह दिया। अब मंत्रों का उच्चारण इतना सटीक होता है और इतना विज्ञान है कि उसमें थोड़ी सी त्रुटि होने पर परिणाम में बहुत बड़ा भेद हो जाता है। तो इंद्र शत्रु के बदले इंद्र शत्रोह कह दिया, तो एक ऐसा व्यक्ति पैदा हुआ जिसकी हत्या इंद्र करेगा, उल्टा हो गया। तो पैदा करने था ऐसा असुर जो इंद्र की हत्या करेगा, लेकिन पैदा हुआ एक व्यक्ति जो इंद्र मारेगा, इंद्र जिनको मारेंगे, जिनकी हत्या करेंगे। तो ये मंत्रों के उच्चारण में ये विशेषता है। तो अब हमें समझना चाहिए कि श्रीला प्रभुपाद ने हमको हरे कृष्ण महामंत्र तो दिया, तो अपराध मुक्त रूप से जप करने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन महाप्रभु की दया से हरे कृष्ण जप में एक विशेषता यह है कि इसमें कोई नियम नहीं। नामना मकारि बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पित नियमिता स्मरणे न काल। तो हरे कृष्ण के जप में यदि हम ध्यानपूर्वक जप करेंगे, नियम के अनुसार जप करेंगे, जितने हमारे 16 माला वगैरह दिया गया है उसके अनुसार करेंगे, तो फिर प्रगति अवश्य होगी। और यदि अपराध युक्त जप भी कर रहे हो, यदि भक्तों के संग में प्रशिक्षण लेकर करते रहेंगे, तो उन अपराधों से भी मुक्त हो सकते हैं। तो कई बार लोग कहते हैं कि ये 16 माला क्यों, ये कौन से शास्त्र में दिया है 16 माला? भगवत गीता के आधार पर आप लोग प्रचार करते हो, गीता के कौन से श्लोक में कहा है 16, और वो भी हरे कृष्ण का 16 माला, मुझे बताओ। मैं तो ये माला वाला में विश्वास नहीं करता। मेरा तो विचार है कि जब मूड आता है तब मैं जपता हूं, और क्योंकि भक्ति तो मन की बात होती है ना, और भक्ति के बात में अगर ये नंबर वंबर जोड़ दिया 8, 10, 16, ये सब गणित आ गया तो फिर भक्ति का भाव निकल जाता है। इसलिए मैं बिल्कुल हृदय के अंतःकरण में नाम जपता हूं, जब मूड आता है तो जपता हूं, जब नहीं आता तो नहीं जपता हूं। तो ये 16 माला का क्या आपका फॉर्मूला है? और कृष्ण ने कहा अर्जुन को कभी माला करने को कहा था? अर्जुन रोज युद्ध भूमि में आते थे, कृष्ण थोड़ी पूछते थे अर्जुन माला किया क्या आज। और कुरुक्षेत्र की रणभूमि में युद्ध के समय अर्जुन थोड़ी कृष्ण को कहते थे अब थोड़ा रथ को साइड में लो, 4 माला बचा है मेरा, माला पूरा करके आगे युद्ध करेंगे। और तुम लोग यहां सेवा के बीच बीच में गुल हो जाते हो, कहते माला बाकी है, माला बाकी है, ये क्या चल रहा है? कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में ये सब तो हमने देखा नहीं। और आप कहते हो कि हमारा पूरा इस्कॉन का प्रचार गीता के आधार पर है, और गीता के आधार पर है तो गीता जिसने सुनाई और जिसने सुनी उनके बीच तो माला की बात हुई नहीं कभी, और आप कहां से बीच में माला ला दिए? माला का एजेंसी खोले हो क्या, बेचना चाहते हो इसलिए कर रहे हो? तो वास्तव में वर्णन आता है, तुम्हें दुई हस्त बद्ध नाम गण ने जल पात्र बहिर्वास वही बे के मोने। चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है कि नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं महाप्रभु को कि आप जब दक्षिण भारत की यात्रा करोगे तो आपके दोनों हाथ बंधे रहेंगे, एक हाथ में आप नाम जपते रहोगे और दूसरे हाथ में गणना करते रहोगे। तो इस बात का प्रमाण है कि चैतन्य महाप्रभु जब पूरे भारत भर में भ्रमण करते हुए प्रचार करते थे, नाम कीर्तन करते थे, वो गणना रखते थे, गिनती रखते थे। और इस आधार पर हम लोग ये जो मंत्र है उसको गिनते हैं और उसके आधार पर हम लोग भक्ति करते हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं कि मंत्र का उच्चारण है तो कुछ भी कर दिया और कैसे भी कर दिया, लेकिन फिर भी उसको ध्यान रख के जितना यथाशक्ति संभव हो सटीक ढंग से करना चाहिए, ध्यान पूर्वक करना चाहिए, और मंत्र का उच्चारण हमें श्रवण करना चाहिए, और इससे हमारी भक्ति में प्रगति होती है। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक यहां पर जो सूचना इस तात्पर्य में आता है कि इंद्र शत्रु विवर्धस्व, जो मंत्र है वो ऐसा नहीं कि जैसे आए हम कह दिए, लेकिन जितना हो सके ध्यान पूर्वक हमको प्रतिदिन साधना करके नाम जप करने का प्रयास करना चाहिए। हो सके तो सुबह सुबह उठकर प्रातःकालीन हमको साधना करनी चाहिए, क्योंकि सुबह का समय हमारी साधना के लिए बहुत अनुकूल होता है कि नहीं? सुबह सुबह जब हम जप करेंगे तो ध्यान अच्छा लगता है, तो सुबह के समय मंत्र जपना बहुत आवश्यक है। और जितना हो सके सुबह उठकर यदि मंगल आरती करके यदि हम जप करेंगे तो ध्यान अच्छा लगेगा। एक समय था जब एसटीडी के रेट्स रात को अलग अलग होते थे, सुबह के समय रात के समय 9 बजे के बाद हाफ रेट होता था, तो मैं स्टूडेंट लोगों को एग्जाम्पल देता था कि भाई नाम जप मतलब भगवान को एसटीडी लगाना, तो इसलिए जो है सुबह सुबह हाफ रेट चलता है उस समय लगाया करो और अच्छा बिल्कुल कॉल जाएगा, डायरेक्ट कृष्ण के साथ कनेक्शन लगेगा, तो इसलिए सुबह उठ के एसटीडी लगाना। तो लड़के कहते थे प्रभु रात को भी हाफ रेट होता है, 9 बजे के बाद भी होता है, उस समय लगाएं तो कैसा रहेगा? तो मैं कहता था लाइन बिजी भी बहुत आता है उस समय, इसलिए सुबह ही इसको निपटाओ तो ज्यादा अच्छा है। और अभी मैं वृंदावन में दामोदर लीला का वर्णन करते हुए कह रहा था कि कई बार लोग कहते हैं कि कब वो दिन आएगा जब कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि सुनाई पड़ेगी, तो मैं कहता था कि कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि तो दूर की बात है, जब अलार्म की ध्वनि हमको बहुत अच्छी लगे, सुबह सुबह जब अलार्म बजता है तो वो सुन के जब आनंद आए तब समझना चाहिए कि हाँ अभी मैं प्रगति के पथ पे हूं। लेकिन सुबह सुबह अलार्म बजता है तो कितने लोग हैं जिनके दिल में लड्डू फूटते हैं, अलार्म बजते ही साथ पकड़ के उसको दबोच देते हैं, और कहते हैं कि जालिम व्यक्ति ने बनाया इसको, उठा के फेंक ही डालो इसको। तो कभी मन में ऐसा उल्लास नहीं आता कि अरे सुबह हो गई, अब उठना है, साधना का समय हो गया, कृष्ण के विग्रहों का दर्शन करेंगे, नाम जपेंगे, मजा आएगा, ऐसे भावना आती है क्या? सोचते क्यों सुबह हो गई, बिल्कुल अभी बिल्कुल नींद ही लगी थी और कितना आनंद आ रहा था, और वो सब नष्ट हो गया, भंग हो गया। इसलिए प्रातःकालीन साधना बहुत आवश्यक है, और नाम जप वो भी ध्यानपूर्वक भक्तों के संग में करना बहुत आवश्यक है। इससे भक्ति में प्रगति तीव्र गति से होती है। तो यहां बहुत हमको समझना चाहिए कि भक्तों का संग इसके लिए बहुत अनुकूल है, क्योंकि भक्तों के संग में लोग एक दूसरे को पूछताछ करते रहते हैं। यहाँ पे काउंसलर सिस्टम है और बाकी मंदिर से जुड़े बहुत सारे सिस्टम हैं जिसके अनुसार आप भक्ति में आगे बढ़ सकते हो। लॉस एंजलस में एक भक्त था, वो मंदिर में कुछ साल रहने के बाद विचार करने लगा, ये मंदिर का जीवन बहुत परेशानी है, रोज रोज हमको समय पर उठना पड़ता है, मंगल आरती जाना पड़ता है, ये है वो है, और मेरे को दरिया में समुन्द्र में जाके सर्फिंग करना बहुत अच्छा लगता है, और मैं सुबह सुबह सर्फिंग करता था 6 बजे 6:30 बजे सूर्य उदय होने से पहले, वो टाइम पे बैठ के मेरे को जप करना पड़ता है, अब बहुत हो गया, अब मैं जाके फिर जाऊंगा वापस मंदिर छोड़ के चला जाऊंगा और समुन्द्र में जाके सर्फिंग करूंगा। तो छोड़ दिया मंदिर, चला गया, एक सर्फ बोर्ड लिया उसने, बड़ा सा आता है जब नौका की तरह, और उस पर वो समुन्द्र के अंदर घुस गया, और समुन्द्र में सर्फिंग कर रहा है तो सामने से अचानक शार्क मछली आ गया। शार्क जानते हो ना, शार्क मछली ऐसा है कि जो किसी मनुष्य को देखकर उसको लगता है कि चलो भोजन है और खा जाता है वो, तो उसको देखकर ये घबरा गया कि अब शार्क आ गया, नष्ट कर देगा मुझे, क्या करें। तो जैसे ही शार्क को देखा, वो तुरंत सब मंदिर में जितने सारे मंत्र पढ़े थे वो सब याद करने लगा। सुबह मंगल आरती से शुरू किया उसने, गुरु को याद करने लगा, गुरु जी बचाओ मुझे, संसार दामों से शुरू किया, नरसिंह आरती हो गया, तुलसी आरती गा दिया, गुरु पूजा गाने लगा, तब भी शार्क वहीं पे आसपास ही मंडरा रहा है, और घबरा गया। फिर फाइनली उसने एक व्रत लिया कि भगवान रुक्मिणी द्वारकाधीश जी, जो हो कुछ भी करो, इस शार्क के बला से अगर मुझे बचाते हो तो मैं वादा करता हूं कि यहां से उठकर सीधा मंदिर में घुस जाऊंगा और फिर मंदिर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा और आपका पुजारी बन जाऊंगा, चलो आपके पास ही रहूंगा, बस सर्फिंग करने आया, ये तो सफरिंग हो गया मेरे लिए, तो कृपा करके मुझे बचा दो। और तब वो शार्क बिल्कुल और पास आने लगा, और पास आने लगा, और पास आने लगा, और निकट में आके उनके पास गया और बिल्कुल उनके दाईं ओर से घूमा और पीछे से परिक्रमा करके बाईं ओर से निकल के चला गया। तो ये देखकर इनको इतना संतोष हुआ कि बोले इतना साल भक्ति किया, वो कुछ तो काम आया, कम से कम जान तो बची। वहां से निकले, सीधा मंदिर भाग के आए और मंदिर में घुस गए, और भक्त लोग पूछ रहे थे एक हफ्ते तक दिखा नहीं, क्या बात है, बोले जरा घूम के आया था मैं। और उस समय से वो पुजारी बन गए और कभी मंदिर छोड़ के गए नहीं। तो भगवान के भक्तों का संग छोड़ के भी जाओ तो भगवान के पास कई ऐसे उपाय हैं जिससे आपको पकड़कर वापस ला सकते हैं। तो एक दूसरा व्यक्ति इंग्लैंड में ट्रेन से जा रहा था, उसको कुछ ज्ञान नहीं था जीवन का लक्ष्य क्या है, कुछ नहीं, ऐसे ही व्यक्ति था। तो ट्रेन स्टेशन पे पहुंच गया, लोकल ट्रेन था, उतरने वाला था, तो दूसरा एक सज्जन ऊपर से अपना एक सूटकेस या कुछ बड़ा सा थैली निकाल रहा था और निकालते निकालते छूट गया और इस आदमी के सर पे गिर गया, और सर पे गिर गया तो झटका लगा, तो अचानक वो पूरा याददाश्त खो बैठा, स्मृति खो बैठा, जोर से झटका लगा और बिल्कुल दिन में तारे दिखने लगे, बाहर निकला, उसको समझ नहीं रहा कौन है वो, कहां से आया, सब भूल गया, पूरा मेमोरी लॉस। और जैसे ही बाहर स्टेशन पे आया, स्टेशन में चलने लगा, भटकने लगा, तभी एक डिवोटी किताब बेच रहा था, तो डिवोटी किताब बेचते हुए, गीता बेचते हुए आके बोला, ये गीता है, इसमें जानकारी है कि मैं कौन हूं, तुम जानते हो तुम कौन हो? बोला मैं नहीं जानता मैं कौन हूं। बोलो तुम जानना चाहते हो मैं कौन हूं? हां जानना चाहता हूं। चलो मेरे साथ। तो डिवोटी उसको लेके गया मंदिर, और डिवोटी भी सोच रहा बड़ा सबमिसिव है, कोई जानता ही नहीं क्या बात है। तो बोले तुम जानते हो तुम कहां से आए हो? नहीं पता कहां से आया हूं। अरे कुछ पता नहीं आपको, कहीं किसी को सूचित करना है क्या? बोला कोई नहीं है मेरा, मैं अकेला हूं। तो बोले भक्त बनने के लिए बेस्ट कैंडिडेट है ये, उसको बढ़िया मंदिर में रख कर। तो बोले अगर आपका सर के बाल निकाल दें तो कुछ प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको पूरा साधु बना दिया। और मंदिर में वो सेवा कर रहा है, सेवा कर रहा है, अच्छा डिवोटी बन गया। एक सवा साल वहां पे सेवा करने के बाद एक दिन किचन में हेड कुक ऊपर से बटाटा का एक थैली निकाल रहा था, वो धाड़ करके उसके सर पे गिर गया। सिर पे गिरा तो फिर उसको याद आया मैं कौन था, तो आके कहने लगा प्रेसिडेंट को, अभी मेरे को याद आया मैं कौन था, लेकिन ऐसा है कि अब मैं पूरी तरह आश्वस्त हो गया हूं, वापस नहीं जाना मुझे, भगवान की दया से मुझे सब कुछ मिल गया यहां पर। लेकिन वहां जो परिवार के साथ मैं जुड़ा हुआ था, कम से कम उनको कुछ ज्ञान दे के आता हूं, और वो जाकर उनको बुक्स देकर वापस आ गया। तो प्रभुपाद की किताब बेचते बेचते कहीं पर कई लोग ऐसे भटकते हुए मिल जाते हैं, उनका जीवन बदल जाता है। इनके तो सर पर चोट लगी थी इसलिए स्मृति खो गई, और यहां अधिकांश लोग जगत में इंद्र तृप्ति करके अपनी स्मृति खो दिए हैं। तो हो सकता है आपके हाथ से एक किताब लेकर उनकी स्मृति पुनर्स्थापित हो जाए और उनका जीवन परिवर्तित हो जाए और उनके दुखों का सागर नष्ट हो जाए और उनके जीवन में भगवान श्री कृष्ण की अमृत वर्षा हो जाए। हो सकता है आप ही उसके लिए पात्र हो, कोई कुछ कह नहीं सकता। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने जो अपने ग्रंथ लिखे हैं वो देश काल और पात्र के अनुसार, टाइम प्लेस एंड सरकमस्टेंस। इसलिए श्री प्रभुपाद की किताब जो है बहुत शक्तिशाली है, और प्रचार देश काल और पात्र के अनुसार होना चाहिए। जैसे मैं कहता हूं पेप्सी का एड का एक मैं दृष्टांत देता हूं, जो पेप्सी कोला कंपनी ने सऊदी अरब में अपना प्लांट खोला और कहा कि अब हम सऊदी अरब में पेप्सी कोला बेचेंगे, बड़ा सा बिलबोर्ड लगा दिया पूरे सऊदी अरब में, एडवर्टाइजमेंट लगा दिया, और उसमें वो लोग तीन चित्र दिखाते थे। पहले चित्र में दिखाया कि रेगिस्तान में आदमी घूम रहा है और बिल्कुल थक गया, थका हुआ आदमी रेगिस्तान में। दूसरा पिक्चर दिखाते थे उसके हाथ में पेप्सी आ गया और वो पेप्सी पी रहा है गुड़ 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 गुड़। और फिर तीसरे चित्र में दिखाते बिल्कुल जोश के साथ वो हाथ ऊपर किए, बिल्कुल नवीन शक्ति का संचार हो गया और भाग रहा है, और पूरे सऊदी अरब में एक भी पेप्सी का बॉटल नहीं बिक रहा। और सब लोग परेशान, क्या बात है यार, हमने लाखों खर्च किया है इस एडवर्टाइजमेंट के लिए, कोई ले नहीं रहा है। तब किसी ने आके बोला बाकी सब ठीक है, एक प्रॉब्लम है, सऊदी अरब में लोग उर्दू पढ़ते हैं और उर्दू उल्टा पढ़ते हैं, दाएं से बाएं पढ़ते हैं, तो इसलिए आपका एडवर्टाइजमेंट सबसे पहले दाया देखते हैं कि व्यक्ति की बहुत शक्ति है, फिर देखते हैं कि वो पेप्सी पी रहे हैं, उसके बाद देखे थक गया। तो ये देखकर कौन खरीदेगा इसको, कौन स्वीकार करेगा, सब उल्टा है। इसलिए जिस देश काल और पात्र के अनुसार आप प्रचार कर रहे हो उसका थोड़ा विचार करके करना चाहिए, अन्यथा उसका परिणाम उल्टा होगा। तो श्रील प्रभुपाद की विशेषता थी कि उन्होंने ये जो ग्रंथ लिखे वो देश काल और पात्र के अनुसार लिखे हैं, जो व्यक्ति समझ सकता है और उसके साथ कनेक्ट हो सकता है। इसलिए वो ग्रंथ अपने आप में परिपूर्ण है, आप उनको हाथ में दे दो, अपने आप वो व्यक्ति उस बात को समझ जाएगा। किसी भक्त ने प्रभुपाद को पूछा कि आपके किताब के बारे में मैंने दूसरे व्यक्ति को यूं यूं इस तरह से समझाया, वो ठीक था क्या? प्रभुपाद ने कहा मेरे किताब मेरे ग्रंथ सोने के समान है। सोने के विषय में आप कुछ भी कहो, जो सोना का मूल्य जानता है वो खरीदेगा, उसको स्वीकार करेगा। माई बुक्स आर लाइक गोल्ड। इसलिए हमें चाहिए कि इन ग्रंथों को समझें और समझकर इनका वितरण करें, और इससे लोगों के हृदय में परिवर्तन आएगा और लोग वास्तव में समझेंगे कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। तो इसको कहते हैं संकीर्तन यज्ञ, और ऐसे संकीर्तन यज्ञ से वैर का विनाश होता है। यहां त्वष्ट यज्ञ कर रहा है, लेकिन इस यज्ञ के माध्यम से क्या तैयार कर रहा है? एक ऐसा असुर जो विध्वंस करेगा। तो इस जगत में लोग यज्ञ करते हैं, तपस्या करते हैं, लेकिन उसका परिणाम विनाशक और घातक सिद्ध होता है। लेकिन श्रील प्रभुपाद की दया से हम सभी को ऐसी स्वर्णिम संधि प्राप्त हुई है कि हम ऐसे प्रेम के यज्ञ में भाग ले सकते हैं, जिस यज्ञ में भाग लेने से लोगों के हृदय का वैर, नाना प्रकार के क्लेश, दुख, द्वेष इत्यादि का शमन होता है और हृदय में शक्ति और प्रेम का संचार होता है। तो वास्तव में एक एक ग्रंथ जो आप लेके जा रहे हो वो प्रेम पत्र है, भगवान का प्रेम का संदेश है। और जब व्यक्ति के हाथ में वो पड़ेगा तो कैसे उसका जीवन परिवर्तित होगा, उसकी कल्पना कोई सामान्य व्यक्ति अपनी क्षुद्र बुद्धि से नहीं लगा सकता। इसलिए इन ग्रंथों को स्वीकार करके, पढ़कर, अपने जीवन में आंतरिकरण करके उसका परिवर्तन का अनुभव करने के पश्चात संपूर्ण साक्षात्कार के साथ जब व्यक्ति दूसरों को यह ग्रंथ देता है तो उसके जीवन में क्रांति मचती है, हृदय में परिवर्तन आता है, हृदय में गगन चुंबी इंद्र तृप्ति की ज्वाला मुखाएं जो चल रही हैं उनका शमन होता है। ये कल्पना कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। तो इसको अनुभव करना है, ग्रंथ लीजिए और दूसरों को बांटिए। अब जब दूसरों के हाथ में दोगे तब उसका जीवन परिवर्तित होगा और उसके परिवर्तित जीवन को आप कुछ समय के पश्चात देखोगे, अवलोकन करोगे, अपने जीवन से अनुभव करोगे, तब आपके हृदय को संतोष और सुकून प्राप्त होगा कि मैं प्रभुपाद के मिशन में एक उचित पात्र बन के इन ग्रंथों के वितरण में सहायक बना, उसका परिणाम मैं आज देख रहा हूं कि कैसे इसका जीवन परिवर्तित हो गया। कितना बड़ा असुर था, अब देखो कैसे परिवर्तित होके भगवान का कितना बड़ा भक्त बन गया। ये आपके जीवन का मिशन है और श्री प्रभुपाद जी अपने मैराथन के माध्यम से आप सभी को ये अवसर प्रदान कर रहे हैं। आपको चाहिए कि उत्साह और शक्ति के साथ इसमें भाग लें। तो यहां जो त्वष्ट यज्ञ कर रहा है, इस तरह के यज्ञ इस जगत में बहुत चलते हैं और हमने भी अपने जीवन में इस तरह के कई यज्ञ देखे। लेकिन श्री प्रभुपाद जो आप सभी को संकीर्तन यज्ञ में सहभाग लेने का अवसर दे रहे हैं, ये सबसे श्रेष्ठतम यज्ञ है। और इसकी विशेषता यह है कि आपको अपने ऑफिस से या घर से छुट्टी नहीं लेना, अपने दैनिक कार्य करते हुए आप इस यज्ञ में भाग ले सकते हो और श्रील प्रभुपाद का एक एक बुक वितरित करने में सहायक बन सकते हो और देखो कैसे जीवन में परिवर्तन आता है। तो यहां वृत्रासुर अचानक वहां से प्रकट होते हैं। जो असुर यज्ञ से तैयार होते हैं उनका नाम है वृत्र या फिर वृत्रासुर। नाम है असुर लेकिन इंद्र की तुलना में हम देखेंगे कि उनके कितने दैवी गुण हैं। और कल सुबह के भागवत प्रवचन में हम वृत्रासुर की प्रार्थनाओं की चर्चा करेंगे और उसके माध्यम से हम देखेंगे कि नाम के लिए वो असुर है लेकिन वास्तव में चेतना शुद्ध है। तो यहां अब वृत्रासुर प्रकट होते हैं और उनके प्राकट्य के तुरंत पश्चात पूरी शक्ति के साथ वो देवताओं पर आक्रमण करते हैं। देवता वृत्रासुर के आक्रमण का प्रतिकार करने का यथाशक्ति प्रयास करते हैं लेकिन वृत्रासुर की अप्रमेय शक्ति के सामने देवतागण पूरी तरह क्षीण हो जाते हैं और क्षत विक्षत होकर यहां वहां तितर बितर होकर भागने लगते हैं दुम दबाकर। वृत्रासुर उनको चुनौती देता है कि आ जाओ मेरे साथ युद्ध करो, लेकिन देवता पूरी तरह परास्त होकर भागे भागे जाते हैं। अब जाते हैं किसके पास? नारायण के पास। तो मैंने पहले बताया देवताओं की आदत ही है जहां भी काम पटे वहीं जाएंगे। तो अब यहां पे ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से कुछ हुआ नहीं, विश्वरूप के प्रति अपराध हो गया, अब वृत्रासुर प्रकट हो गए, क्या करना है? भागो नारायण के पास। नारायण के पास जाकर फिर उनकी स्तुति करने लगे, आवभगत करने लगे, प्रार्थना करने लगे, कुछ कीजिए, समस्या का समाधान कीजिए। और नारायण उनको देखकर सबसे पहले तो बहुत फटकारे और कहने लगे, अविस्मितम तम परिपूर्ण कामम स्वेनैव लाभेन शमम प्रशांतम विना उपसर्पति अपरम हि बालिशा श्वलंगुले नैव अतितरन्ति विष्णु। तो ये देवतागण कह रहे हैं, अपने साक्षात्कार देवतागण नारायण को कह रहे हैं, नारायण पूछते तुम लोग यहां क्या कर रहे हो मेरे पास। तो देवतागण कहते हैं हे भगवान, हे विष्णु, हे नारायण, अविस्मितम तम परिपूर्ण कामम, आप कौन हो? आप ऐसे व्यक्ति हो जो अपनी शक्ति से ही निरंतर विस्मित रहते हो। परिपूर्ण कामम, कृष्णा ऐसे व्यक्ति हैं जिनके कामनाएं पूरी तरह से स्वावलंबी हैं, स्वयं उन्होंने उसको संपन्न कर लिया है और किसी अन्य शक्ति की आवश्यकता नहीं। स्वे नहीं व लाभेन समम प्रशांतम, और आप पूरी तरह प्रशांत रहते हो, शांत रहते हो। आपके चरणों को छोड़कर त्याग कर जब हम पृथक रूप से अपनी इच्छा की पूर्ति का प्रयास करते हैं तो जीवन में केवल पिटते हैं, बुरी तरह परेशान होते हैं। तो कह रहे हैं विना उपसर्पति अपरम ही बालिशा, ऐसे महान शक्तिशाली अप्रमेय बल वाले भगवान श्री कृष्ण के चरणों को त्याग कर यदि हम इस जगत के अन्य किसी शक्ति या सत्ता का आश्रय लेने की कल्पना मात्र भी करेंगे तो वास्तव में ऐसे व्यक्ति की बुद्धि को बालिशा या बचकानी कहना चाहिए। अर्थात बालिश या छोटा बच्चा बालक कैसे अपनी अपरिपक्व बुद्धि के वशीभूत उचित निर्णय नहीं ले पाता, विवेकहीनता के कारण उचित अनुचित में भेदभाव नहीं देख पाता। हम ऐसे ही मूर्ख हैं भगवान कि आपके चरणों को त्याग कर यहां वहां दर दर भटकते फिर रहे हैं, कृपा करके आप आश्रय दीजिए ना। अरे पूरे जगत को आश्रय दे रहे हो, हम तो आपके ही देवता हैं, हमको आशीर्वाद देने में आपको क्या प्रॉब्लम है। विना उपसर्पति बालिशा, तो अंत में उपमा देते हैं श्वलंगुले नैव अतितरंति सिंधुम। ये देवता गणों का कथन है, ये देवताओं का वक्तव्य है। देवताओं के जीवन में जब आपातकालीन परिस्थिति समस्याओं का बवंडर आ गया है तब देवतागण अपने चित्त के अंतःकरण से अपने आर्तनाद भगवान के समक्ष व्यक्त कर रहे हैं। तो इसलिए देवताओं के इन वक्तव्यों को गंभीरता पूर्वक श्रवण करना आवश्यक है, इससे बहुत शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। क्या कह रहे हैं देवतागण? हे कृष्ण, हे नारायण, हे विष्णु, कोई भी जगत का व्यक्ति आपकी भक्ति और आपके चरण कमलों को त्याग कर, ये कौन कह रहा है? देवता कह रहे हैं। कोई भी इस जगत का व्यक्ति कृष्ण के आश्रय और शरण को त्याग कर अन्य किसी भौतिक जगत के व्यक्ति या देवता का आश्रय लेगा और भौतिक जगत को पार करने का प्रयास करेगा, वो प्रयास हास्यास्पद है। और तुलना देते हैं जैसे कोई व्यक्ति सागर को पार करना चाहे लेकिन सागर को पार करने के लिए कुत्ते की पूंछ पकड़े, पहले सागर में कुत्ते को ढकेलो फिर कुत्ता तैरने लगता है, और तैरते हुए कुत्ते को देखकर अगर मुझे लगे हाँ बहुत अच्छा है, कुत्ता काफी शक्तिशाली दिखता है, इसकी पूंछ पकड़ता हूं, उसकी पूंछ पकड़ के फिर मैं सागर को पार करूंगा। श्व लंगुले नैव अतितरंति मृत्युम और सिंधुम, सिंधु को कुत्ते की पूंछ को पकड़कर कोई पार कर सकता है क्या? संभव है? संभव नहीं है। तो देवतागण कह रहे हैं उसी प्रकार कोई व्यक्ति कृष्ण या नारायण की सेवा छोड़कर हमारी सेवा करेगा, हमारी उपासना करेगा, अरे हम भी गले के कुत्ते ही हैं, हमारे पास मत आओ, विष्णु के पास ही जाओ, वही श्रेष्ठ हैं, कुत्ते की तरह हैं हम, वो कह रहे हैं श्व लंगुले नैव अतितरंति सिंधुम। अर्थात यहां देवतागण देवताओं की उपासना मत करो ऐसा संदेश दे रहे हैं। देवतागण कह रहे हैं कृष्ण की उपासना करो, कृष्ण की सेवा करो। तो आप लोग जब गीता भागवत और बाकी सब ग्रंथ लेकर लोगों को बांटोगे तो कई लोग आपसे प्रश्न करेंगे, गणेश जी की पूजा के लिए कोई बुक है क्या? शिव जी की बुक कोई है क्या? ये है क्या, वो है क्या? लोगों की समस्या है कि जो उनके सामने आता है वो उनको नहीं चाहिए। गीता दिखाओ तो लोग बोलेंगे महाभारत है क्या, महाभारत लेके आओ तो बोलेंगे वेद है क्या। तो वास्तव में प्रॉब्लम क्या, वो नहीं चाहते कुछ। और कई लोगों को जब गीता दिखाओ, एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, गीता पूरी है क्या, 18 चैप्टर पूरा है क्या? तो बोले क्या भैया, हर चैप्टर का हमारा अलग कमीशन मिलता है क्या कि हम आधा करके देंगे? पूरा मतलब क्या है पूरा? अच्छा अच्छा। और बहुत 10-15 प्रश्न पूछेंगे, आधे घंटे तक पूछते रहेंगे, उसके बाद बोलेंगे घर पे है मेरी गीता, नहीं चाहिए। तो पहले ही बोलना चाहिए इतना प्रश्न क्या, क्यों? क्योंकि नहीं चाहिए। तो यहां देवता कह रहे हैं विष्णु की आराधना करो। कई वर्ष पूर्व की बात है, पूरे विश्व भर में सनसनी मच गई थी। क्यों? गणेश जी दूध पी रहे थे, आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा। तो गणेश जी दूध पीने लगे तो पूरे विश्व भर में बिल्कुल सनसनी मच गई, क्या हो रहा है? और लोग अपने बिल्कुल भर भर के, लीटर लीटर भर भर के दूध पिला रहे उनको। लेकिन क्या शुद्ध भक्ति से पिला रहे हैं? नहीं, गणेश जी दूध पिला रहा हूं, कल जरा रबड़ी बना के देना हमको। अर्थात कुछ हमारे भी जीवन में भला हो, केवल भौतिक इच्छा की पूर्ति की कामना से ये कर रहे थे। और हुआ यूं कि हम लोग मंदिर में थे उस समय, तो ब्रह्मचारी लोग भी मिलकर विचार किए, अरे सब जगह गणेश जी पी रहे हैं, अपने मंदिर के एंट्रेंस पे गणेश जी, वो पीते हैं क्या, देखते हैं जरा। तो हम लोग सीढ़ी वीढ़ी लगा के चढ़ गए और हाथ में ग्लास लिया और दूध दूध लेके उनको पिला रहे। और तभी राधानाथ महाराज घूम घूम के वहां आ रहे थे और अचानक देखा ये क्या चल रहा है, ये एंगल और ये पोजीशन पर तो कभी ब्रह्मचारियों को देखा नहीं। और कभी आप लोगों का ऐसा सफाई में और मेंटेनेंस में इतना तो उत्साह देखा नहीं कि आप लोग सीढ़ी वीढ़ी लगाकर ऊपर क्या कर रहे हो। तो बोले नहीं, ऐसा एक खबर मिली है कि गणेश जी दूध पी रहे, तो हम भी अपने मंदिर के जो गणेश जी उनको पिला के देख रहे हैं कि एक सत्य है कि नहीं। तो महाराज ने बोला, अरे दिन में 6 बार हम लोग भोग लगाते हैं, गोपीनाथ जी 6 बार खाते हैं, 6 बार पीते हैं, तो कुछ भी आप अर्पित करो तो स्वीकार होता ही है, तो इस तरह से आपको देखने की क्या आवश्यकता है? तो वास्तव में श्रद्धा के अभाव के कारण ऐसा होता है। लेकिन कुछ लोग उससे भी संतुष्ट नहीं हुए, हां हां कह दिया, उतर के गए और बाबुलनाथ मंदिर में गए पूरा कंफर्म करने के लिए कि पी रहे हैं कि नहीं। तो वास्तव में देवताओं को संतुष्ट करने की जो इच्छा होती है, वो इच्छा केवल अपने निजी इंद्र तृप्ति की भावना से उत्प्रेरित होती। और इसलिए यहां देवतागण स्वयं कह रहे हैं कि आप कृपा करके भगवान श्री विष्णु का आश्रय लीजिए और भगवान श्री विष्णु का आश्रय प्राप्त करके अपने आप हर समस्या का समाधान संभव हो सकता है। तो इस समय नारायण देवताओं पर कुछ क्रोधित होते हैं और कहते हैं, किम दुरापम मई प्रीते तथापि विबुदर्शभा मई एकांतमतिर नान्यात मत्तो वांछन्ति किंचन। नारायण कहते हैं, अरे देवताओं बड़े निर्लज हो तुम लोग, इतनी शिक्षा देने पर भी तुम्हारी मति भ्रष्ट रहती है। अरे इतना भी नहीं समझते कि जो मेरी भक्ति करता है वो अन्य किसी इच्छा की पूर्ति की अभिलाषा नहीं करता। और वो कहने लगे, किम दुरापम मई प्रीते, जो मुझे संतुष्ट करेगा, कौन कह रहा है? नारायण, भगवान श्री विष्णु। किम दुरापम मई प्रीते, जो कृष्ण को संतुष्ट करेगा उसके लिए क्या असंभव है? किम दुरापम, कोई भी बात उसके लिए असंभव नहीं, कोई भी जगत की वस्तु अप्राप्य नहीं। किम दुरापम मई प्रीते तथापि विबुधर्षभ, लेकिन फिर भी भगवान के अधिकृत भक्तों का लक्षण होता है क्या? मई एकांत मतिर नान्यत मत्तो वांछन्ति किंचन, ऐसे महान भक्तगण निरंतर अपने मन के अंतःकरण में केवल मुझे संतुष्ट करने की इच्छा रखते हैं और अन्य कोई भौतिक उपलब्धि के पीछे पागल नहीं होते जैसे तुम लोग हो रहे हो। तो इस जगत में चाहे कोई बड़ा बड़ा देवता भी बने तो उनको फटकारने वाला उससे ऊपर कोई होता ही है, तो कोई भी व्यक्ति इससे बच नहीं सकता। इसलिए परमेश्वर केवल कृष्ण है, भगवान है, लेकिन वो स्वयं भी दामोदर लीला करके अपनी मां के द्वारा फटकार स्वीकार करने के लिए आतुर रहते। अर्थात इस जगत की विशेषता है कि अंततोगत्व हमको पराजित होना ही पड़ता है। तो प्रेम पूर्वक स्वेच्छा से यदि हम भगवान की भक्ति के माध्यम से पराजित होना स्वीकार करें तो सबसे श्रेष्ठ है। तो यहां प्रभुपाद जी कह रहे हैं तात्पर्य में, अ प्योर डिवोटी आस्क्स ओनली फॉर अपॉर्चुनिटी फॉर भक्ति। भक्त विकट से विकट परिस्थिति में भी केवल भक्ति की वृद्धि के लिए ही कामना करता है। और कई बार होता है हम लोग भक्ति में आ गए, हरे कृष्ण मंत्र जपना आरंभ किया और देख रहे हैं कि समस्याएं बढ़ रही हैं, कई कई समस्या आने लगी जो पहले मंत्र जपने के पहले भी नहीं देखा, और मन में संशय आता है ये मैं हरे कृष्ण आंदोलन में आके गलती तो नहीं कर दिया, ये मंत्र के जपने से कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया, ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन वास्तव में जो प्रामाणिक भक्त होता है उसके मन में भावना होती है कि चाहे कितनी भी आपातकालीन परिस्थिति उठ खड़ी हो लेकिन कृष्ण का मुझ पर प्रेम है, और जो ये विकट परिस्थिति भी मेरे जीवन में डाल रहे हैं उसके पीछे उनकी कोई प्रेममय योजना और हस्ताक्षेप है। इस श्रद्धा के आधार पर वो भगवान से उस समस्या का समाधान नहीं मांगता, केवल उस समस्या के समय उनकी भक्ति की भावना ही मांगता है, क्योंकि जानते हैं भगवान कृपालु हैं, दयालु हैं। मैं उदाहरण देता हूं कि कभी कभी प्रसाद सर्विस के समय जब भक्त लोग प्रसाद सेवा करते हैं तो जो वॉलंटियर प्रसाद सेवा करते हैं कभी कभी लंबा लाइन देखकर डर जाते हैं, और भूख भी लगी रहती है और लाइन कभी कभी बढ़ता चला जाता है, क्योंकि पहले प्रवचन के बाद वाले लोग लाइन में रहते हैं, फिर कीर्तन वाले आते हैं, फिर और लोग आते हैं, और दूर दूर तक उनको आशा की किरण नहीं दिखती कि कब यह समाप्त होगा। और कभी लाइन में देखते हैं, फिर बाल्टी में देखते हैं, फिर नीचे स्टॉक है वो देखते हैं, फिर लाइन देखते हैं, तो धीरे धीरे उनका भय बढ़ने लगता है कि आज मेरा क्या होगा, कि अनायास फीस्ट के दिन भी मुझे एकादशी करना पड़ेगा लगता है। तो फिर ऐसे सर्वर लोग क्या करते हैं, फिर सब्जी वगैरह चटनी की तरह देने लगते हैं, थोड़ा थोड़ा बिल्कुल घबरा के, क्योंकि मुझे मिलेगा कि नहीं। तो कई बार फिर मैं क्या करता हूं कि सर्वर के सामने जाता हूं, प्लेट लेता हूं और उनको कहता हूं तुम लोगों के लिए प्लेट बना रहा, चलो जितना चाहिए डालो, तो चार लोग हो बनाओ चार प्लेट, तो मैं उनके लिए चार प्लेट बना देता हूं, बोलो देख कितना चाहिए डाल लिया, प्लेट बन गया कि नहीं, ढक्कन देता हूं उनके ही पैर के नीचे रख देता हूं, देखो अब यही है आप लोगों का चार प्लेट, जितना चाहिए दिन रात बैठ के खाओ, लेकिन अब जो सर्विस करोगे बराबर करो, इतना इतना डर के मत करो। उसके बाद वो लोग ऐसा मुक्त हस्त दान देते हैं, ये दनादन बिल्कुल मारने लगते हैं सबके प्लेट में, और सामने वाला भी घबरा जाता है, अरे इतना दे रहा है, वो कहते हैं प्रभु आप अपने लिए भी कुछ बचा लो, वैष्णव सेवा ही परम धर्म है मेरा, खाओ आप लोग। भक्त को अपनी चिंता नहीं करनी चाहिए, आपने ही अपने प्रवचन में कहा है सेवा भाव, बस आप संतुष्ट हो तो मैं संतुष्ट हूं, प्रभु सब आपके लिए। अब इतना साहस कहां से आ गया, इतना उत्साह कहां से आ गया, प्रसाद रखा है, प्रसाद किसी कोने में रखा है, वो जानकारी है, उससे उत्साह बढ़ गया। तो इसलिए भले उनके हाथ में जो बेलचा है और जो बाल्टी है वो खाली हो गया और खन 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 आवाज कर रहा है, लेकिन चिंता नहीं है, भले यहां सब स्टॉक समाप्त हो गया, सब कुछ समाप्त हो गया, नष्ट हो गया, खत्म हो गया, लेकिन मेरा कोटा है। तो भक्त के जीवन में भी कई बार ऐसी परिस्थिति आती है कि लगता है कि अरे भगवान की कृपा का स्टॉक लगता है खत्म हो गया, नहीं, प्लेट बना के रखा है। भगवत धाम में जाना ही है और वहां भगवान ने सारी व्यवस्था कर दी है, इसलिए सेवा करते समय कभी चिंता नहीं करनी चाहिए कि इतना सेवा कर दिया, इतना सेवा कर दिया, बांटता रह गया, कहीं मैं तो नहीं भूखा मर जाऊंगा। अरे नहीं बाबा, जब कोई इस जगत का सामान्य व्यक्ति योजना बनाते समय अपने सेवक का ध्यान रखता है, तो भगवान जब हमें अपने मिशन में, अपनी सेवा में लगाते हैं, तो वो क्या अपनी कृपा का प्लेट हमारे लिए नहीं रखेंगे? अवश्य रखेंगे। इसलिए भक्त हमेशा इस श्रद्धा के साथ सेवा करता है और यह श्रद्धा ही उस भक्त के आगे प्रगति की, प्रगति के आधारशिला बनती है। और इसलिए यहां पर वर्णन आ रहा है कि अब विष्णु देवताओं को कहते हैं कि आप लोग अब मेरे पास आ तो गए, आपका ये जो आचरण है मैं उससे संतुष्ट तो नहीं हूं, लेकिन क्या करें, आप लोग आए हो, मुझ पर आश्रित हो, तो आपकी इच्छा पूरी करना तो मेरा कर्तव्य है। आप लोग तुरंत यहां से जाओ, दधीचि ऋषि के पास जाओ। दधीचि ऋषि ने नारायण कवच मंत्र का उच्चारण किया है तो उनकी अस्थियां सुदृढ़ हैं, शक्तिशाली हैं, तो उनके अच्युत अस्थियों से आप कोई अस्त्र बनाओगे तो वो वज्र का जो अस्त्र है उससे वृत्रासुर की हत्या होगी, तो वज्र तैयार करो दधीचि ऋषि के पास। तो सब लोग विचार करते हैं दधीचि ऋषि के पास जाया जाए, तो नारायण भगवान कहते हैं एक और बात मैं बता दूं, बहुत महत्वपूर्ण बात है, वो क्या कि दधीचि के पास जाओगे तो सामने अश्विनी कुमारों को सामने रखना। बोले क्यों भाई? क्योंकि इसका इतिहास है, अश्विनी कुमार देवताओं के डॉक्टर थे, देवलोक में अश्विनी कुमार डॉक्टर हैं, लेकिन देवलोक में कोई बीमारी नहीं गिरते, हैं डॉक्टर लेकिन पेशेंट कोई नहीं, तो केवल डॉक्टर की उपाधि लेके वो भी बोर हो जाते, तो वो लोग विचार किए जरा दधीचि ऋषि के पास जाकर कुछ ब्रह्म ज्ञान लेते हैं, बाकी आयुर्वेद का ज्ञान तो ले लिया है, बोर हो रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है। तो दधीचि ऋषि के पास गए तो दधीचि कहने लगे कि अभी मैं ब्रह्म ज्ञान नहीं दे सकता, कुछ समय बाद दूंगा, और इंद्र की अनुमति लेके आना। तो इंद्र को पता पड़ा, इंद्र दधीचि ऋषि के पास आए, बोले देख ये जो मेरे डॉक्टर हैं उनको डॉक्टर ही रहने देना, ज्यादा ब्रह्म ज्ञान वगैरह दे दिया तो अपना डॉक्टरी छोड़ देंगे और मेरे को समस्या हो जाएगी, बड़ी बड़ी बातें करने लगेंगे, और यदि मेरे चेतावनी के बाद भी यदि आपने उनको ब्रह्म ज्ञान दिया तो दधीचि ऋषि मान लेना सर को धड़ से अलग कर दूंगा, सर काट लूंगा। तो इंद्रदेव सब कुछ करते हैं, डराते, धमकाते, मारते, पीटते, सब कुछ करते, तो डरा के धमका के चले गए। तो फिर अश्विनी कुमार आए, फिर अश्विनी कुमार आके कहने लगे ब्रह्म ज्ञान दीजिए। तो दधीचि ऋषि ने, अरे बाबा अभी इंद्र अपने को चेतावनी दे के गया है, और इंद्र जो है इस तरह की चेतावनी देता है तो बहुत डर लगता है। तो अश्विनी कुमार ने कहा सर को धड़ से अलग करेगा, बस इतना ही ना। अरे हम लोग भी कोई कम सर्जन है क्या? हम क्या करेंगे कि सबसे पहले एक घोड़े का सर लेंगे, आपका सर काट के हम लोग अलग स्टोर कर देंगे उसको, और फिर घोड़े का सर लगा देंगे, और उस घोड़े के सर से आप हमको ज्ञान दो। इंद्र क्रोधित अवस्था में आके जब सर काटेगा, कौन सा सर कटेगा? उसके बाद जो आपका ओरिजिनल है उसको हम फिर लगा देंगे, सब कुछ तैयार है कि नहीं? और आप और हम रहेंगे तो भागेंगे वहां से, बोले भैया नहीं चाहिए, क्या भरोसा, कहीं आपका फॉर्मूला गलत हो गया तो गए काम से, एक भी सर नहीं बचेगा। लेकिन उनको श्रद्धा थी, दधीचि ऋषि ने कहा चलो भाई मान लेते हैं। तो उन्होंने जैसे प्लान योजना बनाई थी वैसे ही किया, सर काट दिया, घोड़े का सर रख दिया, और उस सर से उन्होंने ज्ञान दिया, इसलिए उस ज्ञान को कहते अश्वशिरा, जो घोड़े के मुख से निकला ज्ञान। और इंद्र को पता पड़ा, झल्ला के आए और अपने हाथ में तलवार लेकर काट दिया, और उनको लगा दधीचि की हत्या कर दी। लेकिन फिर अश्विनी कुमार आए और जो ओरिजिनल उनका सर था उसको पुनर्स्थापित कर दिया, तो दधीचि ऋषि की जान में जान आई। और अश्विनी कुमारों के प्रति प्रेम भी बढ़ गया कि हाँ भाई जो पहले वादा किया था उसको पूरा किया। तो इसलिए विष्णु भगवान नारायण भगवान अब वो इतिहास बता के कहते हैं कि पहले से उनका आपस में संपर्क रहा है, इसलिए उनको सामने रखकर आप जाओ और देखो क्या लाभ होता है। तो ये लेकर वो जाते हैं दधीचि ऋषि के पास, और जब दधीचि के पास जाते हैं दधीचि कहते हैं क्या मांगने आए हो, और सोचो देवतागण कितने निर्लज हैं, डोनेशन मांगने गए हैं, हम लोग जन्माष्टमी का डोनेशन मांगते हैं और यहां पे डोनेशन मांगने जा रहे हैं किसका, उनकी अस्थियों का, अपनी हड्डियां दे दो मतलब मर जाओ, जान दे दो हमको। तो सोचो ऐसा प्रस्ताव लेके गए हैं, और जब दधीचि ऋषि सुनते हैं उनके प्रस्ताव को कि अरे आप मेरी जान लेने आए हो कोई बात नहीं, अहो दैन्यम अहो कष्टम पारक्य क्षण भंगुरै नोपकुर्यात अस्वार्थ्यै मर्त्य स्वज्ञाति विग्रहे। दधीचि ऋषि कहते हैं अरे आप इस शरीर को मांगने आए हो, इस देह का क्या है, आज है कल नहीं, सन्निमित्ते वरम त्यागो विनाशे नियते सती। अरे चांद की चांदनी है, कब तक ये शरीर चलता रहेगा, जब तक स्वस्थ अवस्था में है इसे किसी उचित कार्य में नहीं लगाएंगे तो कल तो ये भस्मीभूत होने ही वाला है, विनाश होने ही वाला है। तो जो व्यक्ति इस शरीर के विनाश होने से पूर्व अपने शरीर अपनी ऊर्जा अपनी शक्ति अपनी अस्थियों को अपनी बुद्धि को किसी उचित कार्य में लगा सके परोपकार में लगा सके ऐसा मनुष्य जीवन सफल है। तो दधीचि ऋषि कहने लगे अरे इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है कि मैं अपने इस थर्ड क्लास निकृष्ट शरीर को परोपकार के कार्य में लगा दूं, मैं अपना जीवन देने के लिए तैयार हूं दूसरों का भला करने। तो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तात्पर्य लिखते हैं कि वास्तव में यह प्रत्येक मानव का कर्तव्य है कि जो मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है उसका लाभ लें और परोपकार करें, क्योंकि आज नहीं तो कल मृत्यु आनी ही है, और जब मृत्यु आएगी तो सारी सत्ता शक्ति ऊर्जा धन संपत्ति इत्यादि का पूरी तरह विनाश होने वाला है। तो श्रील प्रभुपाद जी हमको यह स्वर्णिम अवसर दे रहे हैं कि जब तक जीवन है और रगों में रक्त का संचार हो रहा है और प्राणवायु चल रही है, अपने आप को भस्मीभूत कर दो, संकीर्तन यज्ञ में आहुति दे दो, और इस तरह से पूरे विश्व भर में कृष्ण भक्ति के प्रचार के लिए आप एक सक्रिय सहभागी बनो। ये मनुष्य जीवन की सफलता है, और ये अवसर बार बार नहीं आता। कल के दिन तो चिता में भस्म होंगे ही, लेकिन उससे पूर्व यदि दो अच्छा कार्य करके मरे तो फिर संतोष के साथ देह त्याग कर सकते हैं कि मैंने अपने इस जीवन काल में कुछ भला किया, और ऐसा भला करने का अवसर आप सभी के पास है। वो क्या कि इस दिसंबर के मैराथन में जो कि आज से आरंभ हो रहा है, यथाशक्ति यथासंभव जैसे दधीचि मुनि भगवान श्री नारायण की योजना में एक सुंदर पात्र बने, उसी प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु और प्रभुपाद के इस मिशन में आप सभी उचित पात्र बन सकते हो। आपको जान नहीं देना है, केवल थोड़ा समय देना है। तो दधीचि ऋषि ने जितना कुछ किया उतना नहीं करना है, उसका एक छोटा सा भाग ही करना है। कोई यहां पर अस्थियां नहीं मांग रहा, कोई नहीं कह रहा हड्डी दे दो अपना, कह रहे हैं थोड़ा समय दे दो, थोड़ी ऊर्जा दे दो, और यथाशक्ति प्रचार करने का प्रयास करो, और देखो कैसे केवल इन ग्रंथों के पढ़ने से लोगों का जीवन परिवर्तित होता है। अरे वास्तव में सत्य बात है, जैसे हमने भी देखा है प्रचार के समय कि बुक से किस तरह प्रभाव पड़ता है, कि रूस में सत्य घटना है, रशिया में एक चोर था, वो चोरी करते हुए जब बाहर निकला तो उसने देखा कि कोई ये घर में चोरी करने लायक कुछ है ही नहीं, और निकलते निकलते बाहर उसने देखा कि एक कोई ग्रंथ पड़ी हुई है, उठा लिया उसको, ग्रंथ उठा के भागा, घर पे आया, वो ग्रंथ कौन सी थी, भगवद गीता एज इट इज बाय प्रभुपाद, और उसने केवल कवर देखा और कवर में देखा कि अर्जुन अपने हाथ में अस्त्र शस्त्र लिया हुआ है, उसको लगा चोरी में काम आएगा, लगता है कुछ टेक्निक दिया है कि कैसे कुछ युद्ध युद्ध करना है। पढ़ने लगा पहला अध्याय दूसरा अध्याय, सोचा ये क्या है भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पढ़ते पढ़ते रुचि आ गई। पहले हफ्ते में 7 रात वो जाता था बाहर, धीरे धीरे 5 रात जाने लगा, 4 रात जाने लगा, चोरी कम होने लगी। तो उसकी पत्नी घबरा गई, अरे पहले आप रोज रात को ड्यूटी पे जाते थे, आजकल केवल 3 दिन जाते हो, 4 दिन जाते हो, क्या बात है। तो बोला कि मेरे जीवन में परिवर्तन आ गया। तो उसने कहा मुझे भी बताओ, तो उनको बताया, वो भी डिवोटी बन गई, दोनों माला जपने लगे। और हुआ यूं कि उनके ससुर थे वो मॉस्को के बहुत बड़े गैंग लीडर थे, ससुर आके कहने लगे बेटा तू हमारे परिवार का नाम मिट्टी में मिला रहे, मैंने तुम्हारे लिए भविष्य में बहुत कुछ स्वप्न देखा था, उसका सब क्या होगा। बोले ये जो गीता है इसने हमको पूरा बदल दिया है, अब हम नहीं कर सकते। तो वही व्यक्ति सुधरने के पश्चात प्रभुपाद के बुक्स का डिस्ट्रीब्यूटर बन गया। और पहले से अनुभव था कि कोई भी घर को बाहर से देखकर समझ जाता था कि इसके पास कितना माल है। तो देखता था कि बड़ा पार्टी है तो पूरा भागवत सेट सीसी सेट लेके जाके उनको टिका के आता था, और उसको लगता था कि कोई इतना नहीं है तो छोटा मोटा बुक दे देता। इस तरह से उनका जीवन बदल गया। एक और एक केस है कि रशिया में इस्कॉन के ऊपर केस हो गया कि इस्कॉन जो है फ्रॉड है, और जज केस को देख रहा था, लास्ट स्टेजेस में था केस, और जज के टेबल पर सारे बुक्स पड़े थे घर पर, वो स्टडी कर रहा था कि वास्तव में लोग कहते कि आपने बुक्स पे। जज का लड़का एक दिन पिताजी को ढूंढते ढूंढते उनके कमरे में घुसा, पिताजी नहीं थे, टेबल पे बुक्स थी। उनका लड़का, जज का लड़का सब बुक्स पढ़ने लगा और गीता पढ़ के प्रभावित हुआ, डिवोटी बन गया, जाके मॉस्को टेम्पल ज्वाइन हो गया। और जज को पता पड़ा मेरा लड़का ही उनके साथ मिल गया है, तो जज ने कहा उनको बैन कर दूंगा तो मेरा लड़का भी बैन हो जाएगा। तो जज ने विचार किया चलो कोई बात नहीं, बुरे हैं इतने बुरे नहीं है, छोड़ दिया, केस डिसमिस हो गया। भक्ति तीर्थ महाराज अपने कुछ लोगों के साथ प्रचार करते हुए 5000 भगवद गीता एक वैन में लेकर वेस्ट यूरोप से ईस्ट यूरोप में जो कम्युनिस्ट राज्य है उसमें प्रवेश कर रहे थे, 5000 गीता डालकर, और पकड़े गए तो सीधा जेल। तो कितना उनका साहस था, पूरा वैन में भर दिया 5000 गीता, और वो थे एक और भक्त थे बाहर के, मतलब रेगुलर क्लोथ्स पहने थे, और एक कुत्ते को साथ में रख लिया। और जैसे ही बॉर्डर पर उनको रोका गया तो बॉर्डर के गार्ड ने कुत्ते को देखा और कहने लगे कुत्ते को हम नहीं छोड़ सकते। तो बोले कुत्ता हमको बहुत प्रिय है, इसके बिना हम कहीं नहीं जाते। तो बोले नहीं नहीं नहीं, हमारे नियम है कुत्ते को प्रवेश निषेध है, नहीं नहीं ये कुत्ता हमारी जान है, हम नहीं छोड़ेंगे। और पूरा आधा घंटा कुत्ते को लेकर वो लोग घुमा रहे थे उसको, और वो गार्ड भी भ्रमित हो रहा था, उनको नियम दिखा रहा था, ये रहते वो। बहुत देर चर्चा करने के बाद अंत में आधे घंटे बाद उन्होंने कहा ठीक है, तुम इतना आग्रह कर रहे हो तो तुम पर कृपा करके हम इस कुत्ते को छोड़ देंगे, ठीक है। तो गार्ड देख रहा छोड़ दो, हाँ, तो कुत्ते को लेके गए और साइड में जंगल में छोड़ दिया। और वो गार्ड का पूरा ध्यान कुत्ते पे ही था कि कुत्ता जा रहा है कि नहीं। और जैसे गार्ड कुत्ते को ध्यान दे रहा था ये लोग गाड़ी लेके अंदर घुस गए। वो गार्ड गाड़ी को चेक करना ही भूल गया क्योंकि उसका पूरा ध्यान कुत्ते के ऊपर था। तो इस तरह से 5000 गीता लेके वो पूरा कम्युनिस्ट देश में घुस गए और वहां पर प्रचार कर डाला। तो कैसे कैसे रिस्क लोगों ने लिए हैं। जनानंद प्रभु अफ्रीका में थे, उनको एक छोटा सा लड़का आके उनको निमंत्रण दिया अफ्रीका में, बीच अफ्रीका के जंगलों में, कि पिताजी आपको घर पर भोजन के लिए बुलाए हैं। अब अफ्रीका में कोई इस तरह से कहे तो वास्तव में डरने वाली बात है कि किसी के घर पर भोजन के लिए बुलाओ मतलब भोजन देंगे या तुम स्वयं भोजन बन जाओगे, वो कहना कठिन है। तो बोले फिर भी मैं जाता हूं। गए उनके पास तो उनके पिताजी बहुत बड़े ट्राइबल चीफ थे, उनको बुलाया और कहने लगे कि मेरे पास ये बुक मिली है, ये गीता, और इसको पढ़कर मैं प्रभावित हुआ हूं, मेरा बच्चा 16 माला करता है, कोई मुझे प्रशिक्षण दो कि किस तरह ये गीता को समझे और अपने जीवन में उतारे। प्रभुपाद के बुक्स कहां कहां नहीं फैले हैं। तो यहां पूना शहर में आप सभी के पास ये स्वर्णिम अवसर है कि आप इन ग्रंथों को लीजिए और लोगों में वितरित कीजिए। यहां कांग्रेगेशन का प्रत्येक व्यक्ति भी संकल्प करे कि प्रतिदिन मैं एक न एक किताब बेचकर ही रात को सोऊंगा, तो भी बहुत कुछ हो सकता है। और इसके विषय में और विस्तृत विवरण यहां पर भक्त लोग आपको अभी देने वाले हैं। अगले 10-15 मिनट में यहां भक्त लोग कुछ आपको योजना बताएंगे और उसके पश्चात हम लोग कीर्तन करेंगे और किताब वितरण से संबंधित और संकीर्तन यज्ञ में भाग लेने के संबंधित अभी जो यहां पर अनाउंसमेंट होगा ये बहुत महत्वपूर्ण है। सभी लोग ध्यानपूर्वक सुनिए और कैसे आप लोग सक्रिय योगदान दे सकते हैं इसके विषय में आप और जानकारी ले सकते हैं। जहां तक कथा का प्रश्न उठता है, दधीची मुनि उस समय क्या करते हैं और उसके पश्चात आगे कथा कैसी बनती है, ये हम लोग कल सुबह के भागवत क्लास में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री प्रभुपाद की जय। गोप्रेमानंदे।